जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय विजिट विद द बॉडी फ्री एज सोल जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हे मेरे को अभिमान जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरम्भ हो चुका है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और घर बैठे बैठे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है जिसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कहीं तैयार होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही हम अपनी इस तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक यात्रा का आनंद उठा सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में अपना कर खुशी खुशी अपनी ड्यूटीज कर सकें। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है सरल भगवद गीता का कोर्स हम कर रहे हैं उसमें हम अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरण ली चैप्टर कर रहे हैं। अध्याय 2 पूरी भगवद गीता का सार है और भगवद गीता पूरे शास्त्रों का सार है, है ना। तो जो पहले हमने वर्सेस किए थे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 63 वर्स 62 से कनेक्टेड है तो मैं 62 वर्स से थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। तो 62 श्लोक में हमने समझा कि क्रोध कब आता है। तो भगवान ने सीक्वेंस में बताई है सारी चीजें ना कि एक व्यक्ति का फॉल डाउन कैसे होता है उसका नाश कैसे हो जाता है उसका पतन कैसे हो जाता है ना। तो 62 से 63 वर्ष तक भगवान ने सीक्वेंस बताए हैं। तो सबसे पहली स्टेज है जब एक व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है निरंतर बार बार सोचता रहता है कि काश मुझे ये मिल जाए काश मुझे वो मिल जाए। देखो चिंतन वर्ड आया इसमें देखना वर्ड नहीं आया है ना। हमें इंद्रिय जो विषय होते हैं वो तो बहुत चीजें हमें दिखती हैं सामने आ जाती है कई बार इंटेंशनली आती है कई बार अन इंटेंशनली हमारे सामने इंद्रिय सुख आ जाते हैं सामने इंद्रिय भोग आ जाते हैं सामने, है ना। तो ये देखने की बात नहीं हो रही है बात हो रही है जब एक व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का निरंतर उसका चिंतन करता रहता है निरंतर उसके बारे में सोचता रहता है ना कि काश मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए, है ना। फिर क्या होता है सेकंड स्टेज में जब व्यक्ति की अटैचमेंट मतलब जब वो निरंतर चिंतन कर रहा है तो उसकी अनुरक्ति हो जाती है अटैचमेंट हो जाती है किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी वस्तु डिजायर से, है ना, अधिक हो जाती है ज्यादा। फिर क्या होता है फिर थर्ड स्टेज में उसको भोगने की इच्छा उसके अंदर प्रबल हो जाती है मतलब इस अनुरक्ति से उसको कामना उत्पन्न हो जाती है उसको भोगने की इच्छा स्ट्रोंग हो जाती है और उसको पाने के लिए वो पूर्ण प्रयत्न करता है ना। जब प्रयत्न सफल नहीं होता जब वो उसकी डिजायर पूरी नहीं होती तब क्या होता है उसे क्रोध आता है। फ्रेंड्स तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है सिंपल इतना सीक्वेंस समझ नहीं भी आता तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें गुस्सा आता क्यों है, है ना। तो गुस्सा आने का कारण हमारी एक्सेसिव थिंकिंग है दुनियादारी की बातों की, है ना। तो फिर गुस्से का सोल्यूशन ये नहीं होता कि गुस्सा मत करो ये तो हमें बचपन से सुन रहे होते हैं हम ये सारी बातें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या ऐसा बोलने से गायब हो जाता है हमारा गुस्सा, है ना। तो भगवान ने इसका रूट कॉज बता दिया हमें कि गुस्से का रूट कॉज क्या है दुनियादारी से फालतू की एक्सेसिव अटैचमेंट्स जो हमने पाली होती है लोगों से वस्तुओं से तो उसको रिप्लेस करना है जितना अटैचमेंट टू कृष्णा इज डिटैचमेंट टू माया। जितना हम प्रभु की भक्ति से अटैच होते जाएंगे उतना हम प्रतिशत में हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हम माया से डिटैच होते हैं दुनियादारी से डिटैच होते जाते हैं ना। ये चीजें आप 3-4 सालों में आप एक्सपीरियंस कुछ लोग कर पा रहे होंगे और कुछ लोग कर पाएंगे 3-4 सालों में, है ना। जितना जितना आपका ध्यान प्रभु की भक्ति में लगेगा, आपको चीजें समझ आएंगी, आपको ज्ञान मिलेगा, तो प्रभु की भक्ति की तरफ आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। अब जब भगवान की तरफ हमारी अटैचमेंट बढ़ती है ना, सही चीजों का ज्ञान मिलता है, तो उतना उतना हमारा क्रोध खत्म होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। क्रोध आने का कारण ही हमारे अंदर तामसिक गुण बढ़ रहा हुआ है, मतलब हमारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। किसी में भी क्रोध बहुत ज्यादा होना तो हमें बस ये मान लेना चाहिए कि इसका मतलब उसमें तामसिक गुण बढ़ा हुआ है और आजकल उसकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बहुत बढ़ी हुई है, है ना। एक तो होता है ना गुस्सा आ जाना, और एक होता है गुस्से का प्रदर्शन करना, है ना। कभी कुछ सुधारने के लिए गुस्सा प्रदर्शित करना पड़ता है, यहाँ वो बात नहीं हो रही है, है ना। यहाँ वो चीज है कि वो आपके बाहर चीजें निकल जाती है, मतलब एक्सेसिव जो एंगर होता है ना भगवत गीता में, उसकी बात हो रही है। और जब हम भक्ति में चलते हैं, है ना, आपने सबने, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब हम थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं ना, थोड़ा सा भी गुस्सा करते हैं ना, अगर बच्चों को भी घर में भी, तो सबसे पहले यही बात आती है कि कैसे तुम भक्ति कर रही हो, कैसे तुम भगवत गीता पढ़ रही हो, हमारा तो एंगर ही कंट्रोल नहीं हुआ, है ना। तो ये उसकी बात नहीं हो रही है, देखो क्लियर बता दिया, इसमें उस गुस्से की बात हो रही है कि जिसमें आप ब्लास्ट कर जाते हो, है ना। देखो बच्चों को समझाना है, आपको किसी को कुछ सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़ता है ना, लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप मतलब एक्सेसिव एंगर आप ब्लास्ट कर जाते हो, आपको पता नहीं होता मैं उस गुस्से के अंदर, उस क्रोध में मैं क्या क्या बोल देती हूँ। तो देखो डिवोशन के कितने फायदे हैं, कि एक तो गुस्सा आना कम हो जाता है, हम चीजों को सही से समझ गए, फिर वही गृहस्थी होगी, उसमें शांति आ जाएगी और वही अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, सेम ही लोग होंगे वही अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। वही जॉब होगी, वही रिलेशन सुधरने शुरू हो जाएंगे। पहले हम दूसरों को सोचते थे कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों को सुधरना चाहिए, मैं तो बेस्ट ही करती हूँ, फिर क्या लगता है मेरे में बहुत कमी है, मुझे अपने आप को सुधारने की बहुत जरूरत है, मेरा ध्यान तो दूसरों में होता है लेकिन मुझे अपने आप को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर ऐसा हो जाता है अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वही जॉब होगी, वही घर होगा, उसमें शांति आ जाएगी, वही रिलेशंस हैं, वही आपको बेटर लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। और आप भी देखो, हम सब पोलाइट लोगों को ही पसंद करते हैं ना, या हर समय जो गुस्से में रहता है, चिड़ा रहता है, कमेंट मारता रहता है, क्या हम उनको पसंद करते हैं? सिंपल बात है फ्रेंड्स, अगर हम इस रास्ते में चल रहे हैं ना, भक्ति के रास्ते में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल रहे हैं, तो हमें वही चीजें करनी है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हों। हम चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो तो हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, हम चाहते हैं कि हमें कोई कमेंट ना मारे, हमें कोई गुस्से में बात ना करे, हर वक्त चिड़े चिड़े ना रहे, तो हमें खुद से पहले शुरुआत करनी है कि हम सबके साथ अच्छे से बात करें, है ना। जो लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है ना, फिर वो भी सुधरना शुरू हो जाती है ना। तो इस तरह हम अपने क्रोध पे काबू पा सकते हैं, है ना। फिर भगवान कहते हैं, नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं अब कि क्रोध से क्या होता है, व्यक्ति का कैसे पतन कैसे होता है, भगवान अब ये बता रहे हैं ना। तो 63 वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से एक व्यक्ति मोहित हो जाता है, मूड भाव पैदा होता है, मतलब उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, वो मोह में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज, मोह से उसकी जो स्मृति है, उसकी जो मेमोरी है, उसका विनाश हो जाता है ना। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, अब यहाँ पे व्यक्ति का पतन होना निश्चित ही है ना। अब वो डिटरमाइंड हो जाता है कि अब मुझे गलत काम करना ही करना है ना, मतलब वो कर ही रहा होता है लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही डिटरमाइंड हो जाता है कि अब मुझे गलत काम करना ही करना है। तो अब लास्ट स्टेज में उस व्यक्ति का पतन हो जाता है ना। तो 62 और 63 वर्ष में हमें भगवान ने बताया कि एक व्यक्ति का पतन कैसे होता है ना। तो पतन की शुरुआत कहाँ से हुई? पतन की शुरुआत हुई इंद्रिय विषयों के चिंतन करने से, संसार का चिंतन करने से पतन की शुरुआत हो जाती है ना। तो स्टार्टिंग में ही हम अपने पतन की शुरुआत रोक देंगे तो हमारा पतन रुक जाता है। अगर हम नेक्स्ट 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 स्टेज में आते गए तो फिर हमारा पतन रुकना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। फिर 64 वर्ष हमने समझा, देखो 62 वर्ष में भगवान ने कहा था कि अनुरक्ति रहते हुए इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने मात्र से, निरंतर विचार करने मात्र से व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये 62 वर्ष में हमने समझा, है ना। और 64 वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि राग व द्वेष से रहित, राग मतलब अनुरक्ति नहीं रहने पर विषयों का सेवन करने से, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विषयों का अगर भोग भी कर रहा है लेकिन अनुरक्ति रहित, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है ना। 62 वर्ष में बुद्धि का नाश बताया और 4 वर्ष में ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ना। अगर राग द्वेष एक व्यक्ति में, अगर वो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उसका पतन हो जाता है। लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे, देखो वहां पे चिंतन करने से ही फॉल डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की अगर राग द्वेष नहीं है लेकिन फिर भी वो अगर विषयों का सेवन कर ले तो भी उसका पतन नहीं होता, तब भी उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है ना। तो भगवान इस श्लोक में सिंपल समझा रहे हैं कि जो आत्म संयमी मनुष्य होता है, जिसने अपने वश में कर लिया हुआ है राग द्वेष से रहित इंद्रियों को, तो वो व्यक्ति विषयों को भोगता हुआ भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है ना। तो भगवान यहाँ इंद्रियों को वश में करने की बात समझा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति डिटरमाइंड होता है कि मुझे करना क्या है ना। वो अंदर से भगवान से जुड़ा रहता है, लेकिन भगवान ने जो कंफर्ट दिए हुए हैं उसको है ना, वो भगवान का वो प्रसाद मानता है ना, और वो उसको भोगता हुआ भी अंदर से उसको पता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपना भी भला करना है और दूसरों का भी भला करना है, इस भाव से वो चला हुआ होता है ना। और हम संसारी लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि हमें तो घर बार छोड़कर ही शायद जो चले जाते हैं उनको ही कृपा मिलती है ना। फ्रेंड्स, ऐसे लोग सीमित बुद्धि के लोग हैं। हमें जो भगवत गीता में बातें लिखी है ना, हमें उसके हिसाब से चलना है। हमें जो लोग जो डिस्क्राइब करते थे आज तक चीजों को, भगवान को, उसके हिसाब से नहीं चलना है ना। भगवान और भगवान की कृपा सीमित है, अगर भगवान चाहे तो किसी पर भी कृपा हो सकती है ना। तो भगवान क्लियर यहाँ पे बता रहे हैं कि भी डरने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट अंदर से ये है कि परमात्मा का चिंतन करते रहो। अब देखो, एक मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ, एक स्पिरिचुअल गाइड की बात मैं सुन रही थी कि एक स्पिरिचुअल लीडर है, मैंने आपको शायद सुनाई भी होगी शायद लास्ट रीडिंग में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी, तो मेरे साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे है ना, तो उनसे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता हूँ, मैं भी जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊं तो मैं आपके पास आऊंगा ये सब सीखने, स्पिरिचुअलिटी का जीवन कैसे जिया जाता है, तो मेरे को भी ये सब सीखना है। उन्होंने कहा कि आप आ भी जाओगे तो कितने दिन आ पाओगे, काम छोड़ के अब आप भी जाओगे तो कितने दिन आ पाओगे, हफ्ता 10 दिन है ना, लेकिन आप जहाँ रह रहे हो ना वहां पे भी आप ये सब चीजें सीख सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बाहर ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत जगह जाना पड़ता है, तो मैं फ्री होकर आऊंगा है ना। तो उन्होंने कहा कि फ्री होने की जरूरत क्यों है आपको, है ना, आपके पास अगर 20 कंपनीज है आप 40 कंपनीज खोल सकते हो है ना, लेकिन चलना भगवान के निर्देशानुसार है, एथिकली अपना जीवन परफॉर्म करना है। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि एथिकली तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बिजनेस है, इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूं मैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है मुझे है ना। फिर उन्होंने कहा स्पिरिचुअल गाइड ने कि फिर स्पिरिचुअलिटी वर्क नहीं करेगी है ना, फिर तो वही बात है कि जो हम दिन में 2 बार भक्ति करते हैं बस वहीं तक हम सीमित रह जाएंगे, जो हम स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं सिंपल, तुम घर बैठे बैठे भी तुम भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो, किसमें कि तुम रहते कैसे हो, 24/7 की भक्ति देखते हैं हमारी वो है ना, हम किससे कैसे बात करते हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है वो कैसा है ना, सही डायरेक्शन में अपनी इंद्रियों को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में हम खुद चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं है ना। तो भगवान ये सब देखते हैं, और जब हम सही दिशा में चलते हैं ऑटोमेटिकली कि दुखों की एंट्री हमारे जीवन में आना बंद हो जाती है, या आते भी हैं दुख तो हमें वो लगते नहीं है फिर है ना, तो अपने आप ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है ना, कि हमें दुखों को डील करना आ जाता है ना, सुख में कैसे रहना है, दुखों में कैसे डील करना है, उसकी गाइडेंस हमें भगवान से सिंपल मिल जाती है। तो अपने आप ही ऐसा व्यक्ति, आत्म संयमी व्यक्ति जिसने राग द्वेष से रहित इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हुआ है, वो व्यक्ति संसारिक भोग करता हुआ भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपर लो ममता जी, हरि बोल।
हरी हरि बोल। अध्याय 2 श्लोक नंबर 65। भगवान की कृपा प्राप्त करने पर मनुष्य प्रसन्नचित हो जाता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। आई रिपीट, भगवान की कृपा प्राप्त करने पर मनुष्य प्रसन्नचित हो जाता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। देखो पिछले श्लोक में क्या कहा भगवान ने कि राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो राग द्वेष रहित होने पर ना भगवान का प्रसाद हमें मिलता है ना। जब अंदर कोई राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता किसी के लिए, कोई एक्सेसिव अटैचमेंट्स नहीं है, आसक्ति अनुरक्तियां नहीं है, द्वेष भाव खत्म हो गए हैं सबके लिए, है ना, अंदर मतलब खाली हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। और भगवान की कृपा प्रसाद रूप में हमें मिलती है, उसमें एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो जाता है, वो मतलब जिसको आप आनंद कहते हो ना, ट्रू सेंस में जो आनंद है, आनंद मिल जाता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन फिर भी वो ये संतोष ना करे, है ना, कि मैं प्रसन्न हो गया, खुशी मिल गई मुझे, है ना, फिर भी वो परमात्मा प्राप्ति की तरफ वो लगा रहे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है, है ना। तो भगवान की कृपा अगर किसी पर हो जाती है तो मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त करता है, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही हमें पता नहीं होती कि भगवान के साथ जब हम स्ट्रांगली जुड़ते हैं तो ही हम ट्रू हैप्पीनेस को फील करते हैं। फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सारे लोग तो कर नहीं रहे हैं, ये इस रास्ते में चल नहीं रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा हुआ है कि थोड़े ही सिंसियर लोग होंगे जो मेरे रास्ते में चलेंगे, और उन हजारों में भी कोई एक होता है जो एक्चुअली मुझे समझ पाता है, है ना। तो भगवान के सिंपल हमें बता रहे हैं कि भाई बहुत रेयर लोगों का रास्ता है ये, है ना। तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जो आप जीवन अब जियोगे, अगर मान लो आपने भगवद गीता पढ़ ली, 3-4 साल लगा लिए, है ना, तो जो आप लाइफ जियोगे, जो आपकी सोच है उसकी दिशा मेजोरिटी से अलग हो जाती है। फिर आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हो, मेजोरिटी का जीवन और खुद का जीवन बिल्कुल डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में परिवर्तन आ गया होता है। फ्रेंड्स आपका लक्ष्य बिल्कुल अलग है, उनका लक्ष्य इंद्रिय भोग है, संसार है, और आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को खुश करना होता है कि बस मैं ऐसे काम करूं कि परमात्मा खुश हो जाए। बाहर से तो सब कुछ होगा फ्रेंड्स, हम, है ना, हम बात भी करेंगे घर में भी, ऑफिस में भी, बाहर से कुछ रियलाइज नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी का जीवन जी रहा है ना, क्योंकि हर समय हम डिवोशन की बातें नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अंदर से चेंजेस आ गए होते हैं, है ना। तो आपको अपनी लाइफ के डिसीजन और प्रायोरिटी को जो सत्संग में आप सीख रही हो ना बातें, उसकी डायरेक्शन में लेकर जाना है ना, और कभी भी विचलित नहीं होना है। सिंपल बात है, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी लोग उल्टे काम कर रही है, उल्टी दिशा में सोच रही है ना, और वो मन के दास है, अपने आप को वो आत्मा नहीं शरीर समझते हैं, मन समझते हैं, इंद्रियां समझते हैं, और हमें मन को दास बनाना है ना, और कार्य वो करने हैं, डिसीजन ऐसे लेने हैं जो हमें ईश्वर के रास्ते में आगे लेकर जाएं, हमारे परिवार को सही दिशा दें और हमें सही दिशा दें, है ना। तो हमें विचलित नहीं होना है कि बहुत सारे लोग इस रास्ते को नहीं चल रहे, तो हमें ये बात समझनी है कि भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि सब लोग नहीं चल पाएंगे मेरे रास्ते में, कुछ विरले ही होंगे जो मेरे रास्ते में चल पाएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात ही हमें पता नहीं कि जब हम भगवान से स्ट्रांगली जुड़ते हैं तो ही हम ट्रू हैप्पीनेस फील करते हैं। फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो हम भगवान के रास्ते में चल रहे हैं तो हमारे सामने दुखदायी परिस्थितियां नहीं आएंगी, है ना। बल्कि इसका अर्थ ये है कि बाहरी जीवन में कर्मों के अनुसार कोई भी बुरी परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसको इसका फर्क पड़ने बंद हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुख की परिस्थिति आ रही है या कोई दुख की परिस्थिति आ रही है, है ना। फर्क नहीं पड़ता कि 50 लाख आ रहे हैं या 50 लाख जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, उसका फर्क पड़ने बंद हो जाता है ना? क्योंकि जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, है ना, हमें ज्ञान मिलता है, चीजों को हम सही डायरेक्शन में समझ पाते हैं, है ना, तो भगवान की कृपा से एक इंसान प्रसन्न चित रहता है, प्रसन्नता अनुभव करता है, वो आंतरिक आनंद में होता है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। फ्रेंड्स है ना, बाकी सारे आनंद टेम्परेरी हैं, सारी खुशियां टेम्परेरी हैं, कुछ भी हमें मिलता है ना, कुछ भी चीजें हमें मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए हमें कोई, है ना, लेकिन ये सारे टेम्परेरी खुशी है फ्रेंड्स। लेकिन जब एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है और उसके कारण जो वो हृदय में प्रसन्नता फील करता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है फ्रेंड्स, उसको कोई छीन नहीं सकता, है ना। और दूसरे भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रसन्नता प्राप्त होने पर समस्त दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में दुख नहीं आते, दुख तो आते हैं, लेकिन उन दुखों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है फ्रेंड्स। उसको समझ आ जाता है कि अगर सुख नहीं रहे तो दुख भी नहीं रहेंगे ना। एक फेज था
कि जिसमें सुख आए लेकिन वो चले गए, तो अब दुख वाला फेज चल रहा है, तो मुझे क्यों परेशान होना, ये दुख भी निकल जाएंगे भगवान की कृपा से, है ना। तो वो सुख दुख में संभाव होना सीख जाता है ना। तो जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, प्रसन्न रहते हो, तो आपको दुखों के बारे में सोचना, अपने डिस्कम्फर्ट के बारे में सोचना, ये स्ट्रगल्स बहुत छोटी छोटी बातें लगती है ना। तो आप ट्रू सेंस में फिर अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाते हो, नहीं तो आपको यही लगता रहता है कि अच्छा ऐसा हो गया था, उसने ये कह दिया, मेरी लाइफ में तो ये स्ट्रगल है, अपने दुख बहुत पहाड़ जैसे लगते हैं और दूसरों के दुखों से हमें कोई लेना देना नहीं होता, और अपना छोटा सा दुख भी आ जाएगा ना जीवन में तो हमें लगेगा कि मुझसे दुखी तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ये सोचते सोचते हम अपने आप को सालों साल परेशान करते रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम चीजों को समझ जाते हैं, है ना, भगवान से जुड़ जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो अपने आप ही दुखों का नाश भी हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि सुख और दुख फ्रेंड्स एक फीलिंग ही है ना, जैसे सुख एक्सपीरियंस करना एक फीलिंग है, एक हैप्पीनेस एक फीलिंग है ना, वैसे दुख भी तो एक फीलिंग ही है ना, कि कुछ हो गया मन के विपरीत हो गया तो हमें लगता है कि मुझे बहुत दुख मिल गया, है ना। लेकिन हम जब समझ जाते हैं कि जब वो सुख का फेज नहीं रहा तो ये दुख का फेज भी खत्म हो जाएगा ना, तो मुझे क्यों ना मैं भगवान से जुड़कर इस फेज से निकलूं, है ना। तो फिर वो संभाव होना सीख लेते हैं मतलब। और भगवान बता रहे हैं कि प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी फिर परमात्मा में स्थिर हो जाती है, है ना। मतलब अब उसकी बुद्धि में कोई शंका नहीं रहती, है ना, स्थिर बुद्धि हो जाती है, मतलब उसकी बुद्धि फिर दृढ़ निश्चय बुद्धि हो जाती है कि मुझे परमात्मा से जुड़ना ही जुड़ना, इसी रास्ते में चलना है जहाँ पे मुझे आनंद मिल रहा है। देखो मन हमारा चंचल होता है और बुद्धि भी हमारी अलग अलग दिशाओं में विभाजित होती है, है ना। कभी भोग के पीछे भाग रही है, है ना, कभी धन के पीछे भागती है, कभी सुख आराम चाहते हैं हम, है ना, कभी मान सम्मान के पीछे पड़े हुए हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं फ्रेंड्स। इसलिए जो बुद्धि है ना, एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती हमारी, है ना। कोई कुछ कह देता है, कोई रिलेटिव कुछ कह देता है तो हम विचलित हो जाते हैं, है ना। अब जब हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें कोई क्रिटिकल रिमार्क आ जाए, आते ही है जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो रिमार्क मिल जाते हैं क्रिटिकल, या कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है, फिर बहुत जल्दी मन अशांत हो जाता है ना। लेकिन जब जब एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता है ना भगवान से, जब उसका अंदर शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है अंदर उसका मन, है ना, तो कोई भी बाहर से कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए तो उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहेगी फ्रेंड्स, है ना। आपको समझ आ जाएगा कि मेरा लक्ष्य है परमात्मा की सेवा करना और परमात्मा से जुड़ना, और मुझे अब इस रास्ते में भटकना नहीं है, है ना। दुनिया दुखाले है, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना। तो देखिए भगवान से जुड़ने से, उनकी कृपा प्राप्त होने पर हम प्रसन्न भी हो जाते हैं, है ना, दुखों का अंत भी हो जाता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। देखो कितने फायदे हैं। लेकिन जब हमारा बुद्धि संसार से जुड़ी होती है, है ना, तो दुखों का कोई अंत नहीं होता, बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती और हम हमेशा ही दुखी रहते हैं। और भगवान से जुड़ने से क्या हो जाता है, उनकी कृपा प्राप्त होने पर, है ना, जब हम नित्य निरंतर सिंसियरिटी से भगवान के रास्ते में चलते चलते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, दुखों का अंत हो जाता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है ना। तो भगवान की कृपा मिलने का एक ही रास्ता है कि हम भगवद गीता के श्लोकों को गहराई से समझें, उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जीने की तरफ बढ़े, ऑटोमेटिकली कृपा मिलेगी हमें जब उनका हम ज्ञान लेंगे, उनके बताए अनुसार जीवन जिएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कि भगवान की कृपा मिलती है ना। आप एक कदम भगवान की तरफ लोगे, भगवान 10 कदम आपकी तरफ आते हैं। आप 10 कदम चलते हो, भगवान हजारों कदमों से हमारे पास आते हैं फ्रेंड्स। भगवान तो खड़े ही हैं बाहर, वो तो वेट ही कर रहे हैं कि कब हमसे संसार छूटे और मैं इसके अंदर जाऊं, है ना। क्योंकि अंदर हमारा इतना कुछ है, इतनी खिचड़ी पकी हुई है दुनियादारी की कि भगवान के लिए हमारे अंदर जगह ही नहीं है, क्योंकि दुनियादारी को बिठाया हमने अपने अंदर, है ना। तो भगवान तो वेट ही कर रहे हैं कि कब मेरे भक्त से संसार छूटे और मैं इसके अंदर जाऊं। तो ये चॉइस हमारी है कि हमने अपने अंदर परमात्मा को इनवाइट करना है या संसार को इनवाइट करना है। भगवत गीता की बातें हमारे अंदर जानी चाहिए या दुनियादारी की बातें, है ना। तो चॉइस कंप्लीटली हमारी है फ्रेंड्स। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरि बोल।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 66। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं होता, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती और ना ही उसका मन स्थिर हो सकता है। स्थिर मन के बिना शांति नहीं हो सकती और बिना शांति के सुख कहाँ। आई रिपीट, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं होता, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती और ना ही उसका मन स्थिर हो सकता है। स्थिर मन के बिना शांति नहीं हो सकती और बिना शांति के सुख कहाँ। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी। तो फ्रेंड्स, इसमें भगवान ने बताया है कि किसको हैप्पीनेस और सुख मिलेगा, इसका मंत्र हमें बता रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने दुनियादारी की कितनी पढ़ाइयां की है ना, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन जाता है, लेकिन कॉलेज में स्कूल में हमने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की, कोई ऐसा लेक्चर नहीं लगाया हुआ जहाँ पे हमें समझाया जाए कि सुख कैसे प्राप्त होता है, मन की शांति कैसे मिलती है, क्रोध को कैसे कम किया जाता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है ना। ऐसा कुछ बातें हमने नहीं समझी कहीं भी, ना घर में, ना स्कूल कॉलेजेस में, है ना। तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स ये टॉपिक समझना? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स करते हैं, है ना, लेकिन ये टॉपिक जो एक्चुअली हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारी पूरी लाइफ चलनी है, ऐसे कोई टॉपिक हमें नहीं समझाया जाती। क्या हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या सुख का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट नहीं है? मन की शांति कैसे मिलनी है? एंगर कैसे कम किया जाए? अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए? हमारा तो ये हाल होता है कि हमें अपने मूड को कंट्रोल नहीं करने आता, है ना। वो इसलिए है क्योंकि जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो हमें पढ़ाई करवा भी रहे थे, उनको खुद भी पता नहीं है ये सारी बातें। उनको भी नहीं पता कि मन की शांति और सुख कहाँ मिलता है। तो एक वर्ष में ही भगवान ने हमें बता दिया। तो भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो मुझसे जुड़ा नहीं होगा उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती, मतलब उसकी बुद्धि की सीट पर अगर कृष्णा नहीं होंगे तो उसका फिर मन स्थिर नहीं हो सकता, और जब मन स्थिर ही नहीं है तो फिर मन में शांति नहीं हो सकती, और जब किसी का मन शांत नहीं है तो सुख का, खुशी की कोई संभावना नहीं रह जाती फ्रेंड्स। तो क्लियरली भगवान ने बता दिया कि जितना जितना आप भगवान से जुड़ते हो उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि दिव्य हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, और फिर मन शांत हो जाता है, और फिर इनर हैप्पीनेस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम भगवान से जुड़ कैसे सकते हैं, है ना, कैसे जुड़े हम भगवान से? तो हमें सत्संग करना है फ्रेंड्स। भगवान से जुड़े जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट है इस रास्ते के, उनकी बातों को नित्य निरंतर सुनना है, श्रवण करना है ना। आजकल तो बहुत ही ईजी है, YouTube पर, Facebook पर, कितने सारे प्लेटफॉर्म है ना, तो आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों को सुन सकते हो, है ना। पहले देखो स्पेशली लोग आश्रमों में जाते थे, है ना, और वहां पर भी कितने दिन रह सकते हो आप, अगर आप, आपके गुरु हैं, आप उनके पास जाते हो तो, है ना। मान लो आप वृंदावन में गुरु रहते हैं तो आप कितने दिन जा सकते हो, एक हफ्ता, एक वीक जा सकते हो, है ना। लेकिन आजकल तो बहुत ही इजी हो गया हुआ है कि हम घर बैठे बैठे स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों को सुन सकते हैं जो एक्चुअली रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं, है ना। साधना करो, जो भी हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, है ना, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, भगवद गीता, अपने उपनिषद पढ़ना, फिर भोग लगाना, मंत्र जाप करना, आरती करना, व्रत करना, ये कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। घर के काम भी सेवा भाव से करने हैं, और समाज कल्याण के किसी काम में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। कोई वृद्धाश्रम है या अनाथ आश्रम है, उनका कोई काम हम कर सकते हैं तो उनमें हमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। गौशाला है, अगर वहां पे हम थोड़ी सेवा कर सकते तो हमें करनी चाहिए, है ना। और फिर फोर्थ कंपोनेंट, सदाचार का पालन करना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान को सदाचारी व्यक्ति पसंद आता है ना। और बिना सदाचार के फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस रास्ते में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फ्रेंड्स हमारी बुद्धि दिव्य होगी, मतलब आप नेगेटिव में भी फिर पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे, आपको बातें समझ आएंगी, ज्ञान मिलेगा सत्संग के द्वारा, है ना। साधना के द्वारा आप में पावर आएगी, एनर्जी बढ़ेगी, सेवा करोगे, सदाचारी जीवन व्यतीत करोगे, तो आप क्या करोगे फिर, आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे। वर्ल्ड लाइफ में हमारे साथ फ्रेंड बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है, बहुत ब्लेसिंग्स होती है हमारे पास, लेकिन हमारी संसारिक बुद्धि ब्लेसिंग्स को देखने की जगह हम लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम चल रही होती है ना, या कोई भी चीज जो हमारे मन के मुताबिक नहीं चल रही होती है, हमारा ध्यान पूरा फोकस उसमें ही होता है। जो चीजें मिली है उसका कोई शुक्राना नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं मिल रही होती है, जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे जीवन में, सारा ध्यान ही, पूरा फोकस ही वहां चला जाता है ना। लेकिन जब एक व्यक्ति की दिव्य बुद्धि हो जाती है, सबसे प्रायोरिटी वो दे देता है कि मुझे बस परमात्मा से जुड़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना है, फिर उसके बाद के रिजल्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे दूसरों को खुश नहीं करना है, मुझे परमात्मा को खुश करना है ना। तो ऐसा व्यक्ति फिर हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव देखना शुरू कर देगा, है ना। आपको समझ आ जाएगा कि हर एक चीज ब्लेसिंग्स होती है, तो समझ आ जाएगा कि जो भी लाइफ में अगर कुछ दुख वाले सर्कमस्टांसेस भी रहे तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। आपको समझ आ जाएगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, और जो होगा वो भी सबसे अच्छा ही होगा, क्योंकि संसारिक तौर पर जो बुरा माना जाता है ना फ्रेंड्स, संसारिक तौर पर हमने एक क्राइटेरिया बनाए होते हैं, है ना, कि इस एज में शादी होनी है, इस एज में बच्चे हो जाने चाहिए, इस एज में ये हो जाना चाहिए, इस एज में बच्चों की शादियां हो जानी चाहिए, इस एज में ऐसे 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 करके हमने पूरे क्राइटेरिया बनाए होते हैं, है ना। और उन क्राइटेरिया से हटके कुछ हो जाए, मान लो, है ना, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है लाइफ में, तो वो बुरा हो गया सामाजिक दृष्टि से, है ना। लेकिन जो उसके अंदर अच्छा हो रहा होता है हम उसको नहीं देखते, जो बुरा हो रहा होता है पूरा ध्यान पूरा फोकस ही हमारा उसमें रहता है, जो मिल गया उसका कोई शुक्र नहीं है, और जो नहीं मिला है उसको हम कोसते रहते हैं, है ना। तो जब बुद्धि दिव्य होगी, जब भगवान जी आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बन गए थे, वैसे ही भगवान जी आपके सारथी बन जाते हैं, है ना। तो जो चंचल मन है ना उसमें फिर स्थिरता आ जाती है, कितना भाग रहा होता है मन जो इधर उधर, है ना, जो अशांत रहता है हर वक्त, है ना, मतलब हर वक्त मन में हलचल मची रहती है। देखो ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि भाई अगर किसी के लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, है ना, बहुत सुख सुविधाएं अगर किसी को मिली हुई हैं, तो उसका मन बहुत शांत होगा और वो बहुत सुखी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। चाहे कितने ही भोग किसी को क्यों ना मिल जाए, तो भी उसके हृदय में हलचल मची रहती है, है ना, क्योंकि अगर वो अशांत है तो वो सुखी कैसे रह सकता है, जब तक कि उसके अंदर की हलचल ना मिट जाए। जो उसको भोग मिले हैं तो वो उन भोगों को भी फिर भोग नहीं पाता है, वो उसको उसमें भी कुछ कमियां दिखती हैं, क्यों, क्योंकि उसका ध्यान उन चीजों में होता है कि जो लाइफ में करंट प्रॉब्लम चल रही होती है, जो ब्लेसिंग्स मिली है उसका ध्यान उसमें नहीं है। उसका ध्यान क्या है, जो करंट प्रॉब्लम चल रही है या जो चीजें नहीं मिली जीवन में, उसका ध्यान उसमें चलना शुरू हो जाता है, है ना। तो जो हमारा चंचल मन है उसमें भी स्थिरता आ जाती है, फिर ठहराव आ जाता है, हलचल मचना बंद हो जाती है, है ना। और जब स्थिर होता है मन, तब मन में शांति आती है फ्रेंड्स, और फिर खुशी पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, है ना, ना छुट्टियों में हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत है, घूमने की जरूरत है, ना हमें खुशी पाने के लिए शॉपिंग करने की जरूरत पड़ती है, ना खुशी पाने के लिए हमें टीवी देखने की जरूरत है, और ना ही खुशी पाने के लिए हमें सोने की जरूरत है, है ना। तो अगर आपका मन शांत है तो नेचुरली जो आप घर का भी काम कर रहे हो, है ना, एक सिंपल सादा घर का बना खाना भी खा रहे हो, दाल चावल एक सब्जी खा रहे हो, है ना, तो आप उसमें भी आप असीमित सुख को आनंद को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप समझोगे कि ये जो खाना मैं खा रही हूँ ना, ये भी बहुतों को नसीब नहीं है, और भगवान ने देखो मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि अगले 6 महीने तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाए तो अगले 6 महीने भी मेरा घर में खाना बनता रहेगा। और कई लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स दुनिया में, उनके पास एक टाइम खाने का खाना नहीं होता, कितने कितने दिन भूखे रहते हैं ऐसे लोग। तो अगर आप चाहते हो हम ट्रू सेंस में हैप्पी रहें, तो हमें मन को शांत करना पड़ेगा। शांति के लिए मन को स्थिर कीजिए, और मन स्थिर के लिए बुद्धि को दिव्य बनाइए, एक दृढ़ निश्चय बुद्धि बनाइए, दृढ़ निश्चय बुद्धि की मुझे स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीना है, भगवान के रास्ते में चलना है, है ना। भगवत गीता में जो हमें बातें बता रहे हैं भगवान हमें, जो उसके अनुसार ही जीवन जीना, तो इस दिव्य बुद्धि के साथ एक व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है, है ना। तो आप पाएंगे कि जितना सिंसियरिटी से आप भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, अगर आप एक कदम चलते हो तो भगवान 10 कदम से आते हैं, आप 10 कदम चलते हैं तो भगवान 100 कदम नहीं चलते, मैंने देखा भगवान हजारों कदमों से हमारी तरफ आते हैं। जितना जितना हम भगवान की तरफ चलते जाएंगे ना सिंसियरिटी से, बाकी सारी चीजें फ्रेंड्स अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी कि आपको जो लगता था कि मैंने कभी चीजें सोची थी भूल गए थे, लेकिन वो चीजें भी होना शुरू हो जाती है। आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिविटी हटने लग जाती है, जो जो भी आप चाहते थे कंफर्टेबल लाइफ वो मिलने शुरू हो जाती है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल,
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोना जी, आज का सत्संग भी डिवाइन सत्संग था सच में। मोना जी भगवत गीता पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हमने जो पहले वाले लाइफ जी है ना, पता नहीं कहाँ थे हम, अब भगवत गीता पढ़ने के बाद की लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है ना, सच में हमें लगता है कि हम ये झूठी जिंदगी में हम पता नहीं कहाँ खो गए थे, ये भोग में सुख में मान सम्मान में खोकर अपनी लाइफ को हमने मतलब भगवान से जुड़े तो थे, मतलब उस तरह से जुड़े नहीं थे जिस तरह अब जुड़े हैं। भगवान की बताई हुई हर बातों पे हमें ट्रस्ट था, पर अब ट्रस्ट नहीं, बिल्कुल विश्वास हो गया इतना कि नहीं, भगवान हमारे साथ ही हैं। सच में सुख दुख की फीलिंग, हैप्पीनेस, इसमें हम घुसे पड़े हैं कि रो रो के जो पहले हम ड्यूटी करते थे, अब हम करते हैं कि हम भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, हमें इसमें कोई हमें दुख की फीलिंग लेके नहीं करना है। जैसे जैसे आपने बताया कि सुख और दुख हमारे मन की ही फीलिंग है, हम अपने मन में बिठा लेते जो चीज हमें नहीं मिली उसके लिए बस रोना, जो चीज है हमारे पास उसके लिए कभी हमें थैंक यू बोला ही नहीं, हमें और ग्रीड वाली कि हमें ये चीज मिली अब और मिल जाए, बस इसी में हम फंसे रहे। तो सच में मतलब इतनी कृपा है ना, यही राज है कि भगवत गीता के श्लोकों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं ना, मतलब एक एक वर्ड जो आप भी हमें इतनी अच्छी तरह से हमें समझाते हैं कि लाइफ कैसे जीनी है और भगवान हमें क्या करें हैं। सच में भगवान के बताए हुए रास्ते पर अब जब चल रहे हैं ना, तो उसमें जो शांति मिली है, सुख, मतलब सुख जो चीजों वाला सुख नहीं, शांति जो आनंद, एक अलग ही आनंद है, मिली अब चीज, नहीं मिली तब भी ठीक है, अभी हमारा समय नहीं आया, पर वो एक अंदर से एक इंटरनल हैप्पीनेस जो फील कर रहे हैं ना, वो आज तक नहीं की थी, जो अब हमें 3 सालों में, अब 3 साल हो जाने हमें जुड़े हुए भगवद गीता से, सत्संग के माध्यम से, सच में अब हर सिचुएशन में हरदम हम प्रसन्न चित्त रहते हैं। मतलब ठीक है ना, दुख आया, ये वाला समय भी था तो अब ये चला जाएगा, अब सुख वाला है तो उसमें हम अच्छी तरह खुश होके मतलब अपने काम करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब हर चीज में हम आनंदित रहे। तो भगवान भी यही बता रहे हैं, जो मुझसे जुड़ा नहीं होगा उसकी बुद्धि कैसे स्थिर होगी। जब हम जुड़ गए हैं भगवान के साथ तो सच में एक बुद्धि भी स्थिर होगी, अब स्थिर बुद्धि से हम एक हर काम को करने का एक मतलब दृढ़ निश्चय करते हैं, और साथ में निर्णय भी सही ले पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। सच में मोना जी, बहुत ही अच्छी तरह से हमें आप एक एक वर्ड हमें समझाते हो, ये तो भगवान की कृपा है कि आप, भगवान ने आपको हमें मतलब ये ज्ञान सिखाने के लिए भेजा, माध्यम बने हैं, तो बहुत ही कृपा है हम सब पर, आप पर भी इतनी कृपा की आप इतना अच्छा ज्ञान हमें आगे बांट रहे हैं। तो वो कौन आजकल मतलब दुनिया में कि मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं क्यों किसी को आगे फील कराऊं अच्छा, या क्या अच्छी बातें बताऊं। तो जी सच में मोना जी आपका इतना धन्यवाद है ना, कि भगवान की हम सब पर ऐसी कृपा बनी रहे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स ममता जी, बहुत ही प्यारे ढंग से आपने आज श्लोकों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और बिल्कुल भगवान की कृपा तो हमें बिल्कुल माननी ही चाहिए कि अगर हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है ना, भगवद गीता के श्लोकों से ज्ञान मिल रहा है ना, भगवान की कृपा हो रही है अगर, है ना, तो इस कृपा को हमें बांटना भी तो है ना, फिर हम सेल्फिश कैसे हो सकते हैं इस रास्ते में चलते हुए, है ना। इस रास्ते में चलते हमें यही होना चाहिए, कोई दोस्त कोई नहीं, दुश्मन कोई नहीं, है ना, जिसको हम समझा सकते हैं, जो हमें सुनना चाहता है, मेन तो वही बात है ना, जो हमें सुनना चाहता है ना, तो उसको गाइड करते चलना, उसमें ये नहीं सोचना नहीं नहीं मैं अपनों को समझाऊंगी, नहीं नहीं ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी फ्रेंड है, इसको समझाऊंगी मैं, ये मेरे दुश्मन है। जैसे हमने क्राइटेरिया दिए होते हैं अपने लाइफ में, है ना, दो पक्ष अपने अंदर रखे होते हैं, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे दोस्त है ना, तो उन चीजों से बाहर आना है, और जो भी भगवान का ज्ञान हमें मिल रहा है, जो हमें सुनना चाहता है, उनको बिल्कुल बांटना ही बांटना है ना, क्योंकि जितना बांटते जाएंगे उतना ही हमें चीजें क्लियर होंगी फ्रेंड, है ना। मतलब अपनों को तो हर कोई सुखी देखना चाहता है, उसमें क्या नई बात कर लेंगे, अगर हम अपने बच्चों को अपने फैमिली को सुख देते हैं तो उसमें क्या नई बात होगी, उसमें तो कुछ नहीं, व्यक्ति करता है, हर पशु करता है ना, लेकिन थोड़ा इससे हटके थोड़ा हम सोचें कि नहीं यार, भगवान ने क्या बताया हमें, वासुदेव कुटुंबकम, है ना, तो भगवान जब सबका ध्यान रखते हैं, है ना, भगवान के लिए स्पेशल ये नहीं है कि मोना कोई और है, ममता कोई और है, पूजा जी कोई और है, मीनाक्षी जी कुछ और है, है ना, मतलब भगवान के लिए सब बराबर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, है ना, हमें भी भगवान के रास्ते में चलना है, और जितनी जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें भी सेवा करते जाना है फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था मोना दी, बहुत ही अच्छे से आपने सारे वर्सेस करवाए। मेरे आज के सत्संग से ये लर्निंग बनी है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से मनुष्य क्रोध और अपना पतन होने से खुद को बचा सकता है, और अगर कोई मनुष्य इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इंद्रियों को यूज तो करना है पर अंतर आत्मा से प्रभु का चिंतन करते रहना है। दिस इज द ओनली वे हाउ वी कैन कनेक्ट विद गॉड और हम अपना पतन होने से खुद को बचा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये सीखा नेक्स्ट वर्स में कि प्रभु कृपा से मनुष्य प्रसन्नचित हो जाता है, उसकी बुद्धि स्टेबल हो जाती है। एक्चुअली स्टेबल होने से ये तात्पर्य है कि मनुष्य वर्ल्डली लेवल पर तो इंद्रियों का भोग करता है, पर अंतर ध्यान में वह प्रभु से जुड़ा रहता है। वह बाहरी दुनिया के सुख दुख से विचलित नहीं होता, और ऐसा मनुष्य बहुत बहुत ही विरले होते हैं। हर कोई हर सिचुएशन में ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है, इसलिए प्रभु कहते हैं इस राह पर हर कोई नहीं चल सकता। और ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में दुख नहीं आएंगे, वे आते हैं, परंतु वे उन सबसे परेशान वो मनुष्य उन सबसे परेशान नहीं होते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रभु से जुड़े होते हैं, अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो बॉडी लेवल पर सुख दुख से वे विचलित नहीं होते, वे संभाव में रहते हैं। नेक्स्ट वर्स में मैंने ये सीखा, लाइक हमारे लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। लाइक हमारे लाइक रियल हैप्पीनेस क्या है, क्रोध को कैसे कम करना है और वो कैसे कम होगा, हम मेंटली स्टेबल कैसे होंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हम सबकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन सब का आंसर हमें भगवान से जुड़कर ही मिल सकता है। और भगवान से जुड़ने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे 4S मॉड्यूल को फॉलो करना। 4S मॉड्यूल में हमारे पास सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार है, इन सबको हमने अच्छे से फॉलो करना है। इन सबके करने से हमारी नेगेटिविटी खत्म होगी और हम हर बात में पॉजिटिव अर्थात प्रभु कृपा ही समझेंगे। हर चीज में हम प्रभु की ब्लेसिंग्स मान के चलेंगे और प्रसन्न रहेंगे, मतलब संभाव रहेंगे। और हमें नियंत्रण प्रयास करते रहना है, ये नहीं कि एक बार हमें ऐसा किया, हम हो सकता है हम फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो हमें लगेगा कि नहीं हमारे पर कोई कृपा नहीं, हमें तो दुखा ही रहे हैं। हमने इन चीज बातों से अनस्टेबल नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना है। हमने हर चीज को, और ये एक बार करके नहीं, हमें कंटिन्यूटी, हमें वो कहते हैं ना कंडीशन, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो जब तक वो हम करते नहीं जाएंगे तो ए टाइम ऐसा आएगा कि हम ये सारी नेगेटिविटी भूल जाएंगे, हम संभाव से रहेंगे और हर चीज में हमें प्रभु की कृपा नजर आएगी। और जितना प्रयास हम करेंगे प्रभु हमारे लिए, उससे ज्यादा ही हमें अपनी ओर हमारे ओर बढ़ेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुली बहुत ही अच्छी तरह से दोनों श्लोकों को अच्छे से आपने रिवाइज कर दिया। और जैसे कि आपने कहा ना कि हम सीख जाएंगे फिर ऐसा जीवन जीना, है ना, मतलब जो दुनियादारी की कंडीशनिंग हुई हुई है ना हमारी बचपन से, जो हमारे माहौल ने, हमारे वातावरण ने, हमारे आसपास के लोगों ने, जो भी कंडीशनिंग एक बच्चे की हो जाती है, जो हमारी हुई होती है, फिर हम सेम कंडीशनिंग, सेम पैटर्न हम अपने बच्चों के लिए फॉलो करते हैं, है ना। ना हम दुख खुश हैं और ना हमारे बच्चे फिर खुश होंगे अगर हमने ये वाला लाइफस्टाइल फॉलो किया। अभी भी हम नहीं सुधरे तो हमारे बच्चों का भी जीवन सेम वही होने वाला है फ्रेंड, जो हमारा था, है ना, जिसमें हम दुखी रहते थे, है ना। दुखी रहते थे मीन्स कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करना कभी भी, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है उसका चिंतन करते रहना, है ना, हमेशा सुखों के पीछे भागते रहना, सुख आगे आगे और हम पीछे पीछे, है ना। अब क्या होता है, हम आगे आगे और सुख हमारे पीछे पीछे, कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, तो मतलब कुछ ध्यान भी नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए हमें, ये सब चीजें अपने आप ही मिलती हैं। हमें क्या करना है, सिंपल सिंसियरिटी से भगवान के साथ जुड़ना, बिल्कुल सरेंडर कर देना। निर्मल मन, निर्मल जब हो जाएगा ना, अपने आप भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है फ्रेंड्स, सिंपल बात है, है ना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल। थैंक यू मोनाली, थैंक यू सो मच। आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था। आज आपने जो दो श्लोक करवाए हैं उनसे मेरी ये लर्निंग्स बनी हैं कि जब हमारा हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, हमारे मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, हमारा प्रभु से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है और हम ट्रू हैप्पीनेस फील करते हैं। हमें बस हमारी लाइफ में प्रभु द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है और प्रभु के बताए गए रास्ते पर ही चलना है, जिससे कि हमें प्रभु की ब्लेसिंग्स मिले। जब तक हम खुद को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारी बुद्धि स्टेबल नहीं हो सकती। हमारे मन और दिमाग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, और जब तक हमारा हमारे मन पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारी लाइफ में पीस नहीं आ सकता, और बिना पीस के हम खुश भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर हमारा मन ही शांत नहीं होगा तो खुश कैसे रहेंगे। इसलिए हमारा प्रभु से कनेक्ट होना हमारी हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमारी लाइफ को लाइफ में सत्संग सेवा साधना और सदाचार से जीना है। जब से मैं भागवत गीता सुन रही हूँ तब से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। मैं जो भी मोनदी आपसे सुनती हूँ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी बुद्धि भी थोड़ी सी स्टेबल हुई है, मैं कंपैरेटिवली अपनी लाइफ को बेटर वे में जी पा रही हूँ। सिचुएशन बेटर भी होती है, मैं काम ही रहती हूँ, हर सिचुएशन को मतलब कि स्टेबल हैंडल करती हूँ। अगर सिचुएशन हमारे फेवर में है तो मैं श्री हरि को थैंक्स बोलती हूँ, अगर नहीं है तो प्रभु को बोलती हूँ कि प्लीज हेल्प मी, ये सिचुएशन या पर्टिकुलर कोई बात मेरे हाथ में नहीं है। एंड बिलीव मी मोना दी एंड एवरीवन, वो मेरी हेल्प भी करते हैं और वो मेरी सुनते भी हैं और मुझे गाइड भी करते हैं। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस जो आप सब ना एक्सपीरियंस सुनाया करो, है ना। जैसे पूजा जी ने सुनाया है ना कि मेरी लाइफ ऐसे बेटर हो रही है, कोई भी श्लोक पर्टिकुलर आपको लगता है कि हाँ इस श्लोक से या जनरल भगवद गीता के श्लोकों से आपकी लाइफ बेटर हो रही है, आपका जीने का तरीका बदल रहा है ना, तो ये अब काम होना, स्टेबल होना, है ना, क्रोध कम हो जाना, ये कोई छोटी बातें नहीं है फ्रेंड्स। यही जो बातें हैं जिन्होंने धमाल मचाया होता है दुनियादारी में, तो मतलब लाइफ जीना सीख जाते हैं हम, है ना। और जैसे पूजा जी बोल रहे हैं कि सिंपल बात है, भगवान कह रहे हैं कि तुम निश्चल मन से मेरे पास आओ, सिंपल, छोड़ दो सारे छल कपट। जब हम छल कपट का त्याग कर देते हैं, सिंपल जो राइट है, जो चीजों को एज इट इज करना है और सोचना है, कुछ इफ बट नहीं, ऐसे नहीं कर लूंगी तो वैसे वैसे नहीं, जो आपको सही लग रहा है अंदर से गाइडेंस मिल जाती है उसके अकॉर्डिंगली जब हम लाइफ जीते हैं। मैं बोल रही हूँ बाकी चीजें अपने आप होंगी, आप भगवान की तरफ कदम तो बढ़ाओ एक, बस हमारी मुश्किल है कि हम भगवान की तरफ एक कदम भी बढ़ाने में बहुत सोचते हैं, बढ़ा लेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, है ना। तो जितना जल्दी जल्दी हम भगवान की तरफ बढ़ते जाएंगे, चीजों को अप्लाई करते जाएंगे, समझते जाएंगे, पॉइंट्स बनाओ भगवद गीता के श्लोक का, या बार बार सुनो, बार बार सुनो, दोबारा जाओ पॉडकास्ट पे सुनो क्या बोला था आज, क्या बोला उसको दोबारा रेपिटेशन में सुनो। मैं कितनी बार एक एक श्लोक सुनती हूँ पता है आपको, है ना। तो जब क्लियरिटी आती है लगता है कि मतलब मैं क्या सोच रही थी और भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब ह्यूज डिफरेंस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिफरेंस होता है ना। हम सोचते हैं दुनियादारी के एंगल से और भगवान हमें कुछ और ही एंगल समझा रहे हैं, सिंपल एंगल समझा रहे हैं, हमें वो समझ नहीं आ रहा, हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने में मजा आता है। एक्चुअली हमें लगता है भगवद गीता से कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है इसलिए हम उससे भागते हैं, लेकिन जब समझ आ जाती है कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं लगती फिर। तो इस तरह से अगर जीवन जीतते हैं तो अपने आप जो हमारी जो मटेरियल लाइफ की जिंदगी है वो भी थोड़ा सुधरना शुरू हो जाती है, सुधरेगी इस सेंस में कि अगर प्रॉब्लम आती भी है तो हमें डील करना हो जाता है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी।
अरे बोल मोना दी, मैंने एक बात बोलनी थी, मतलब मैंने सिंपल अपनी लाइफ में आपने जितना कुछ मुझे बताया कि दो तीन पॉइंट्स ही मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, मैंने बहुत कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ दो तीन पॉइंट्स। एक ये कि मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं, ना है ना रखती हूँ, और दूसरा ये कि सिचुएशन जैसी भी है ना उसको मतलब कि उसके अगर मेरे हाथ में ही नहीं है तो उस सिचुएशन को लेके मैं परेशान क्यों हूँ, क्योंकि जो भी है वो श्री हरि के हाथ में है। कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है तो मैं उन्हीं को बोल देती हूँ, तो मैं हस्बैंड को भी समझाती हूँ, और घर पे जैसे गुस्सा है, मेन गुस्सा जो मेरे में बहुत ज्यादा था, मैं एडमिट करती हूँ कि बहुत ज्यादा था, अब इतना कम हो गया है कि अब जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर ही होता है थोड़ा सा, मैं कि हस्बैंड के साथ जो होता था वो सब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली में रहते हैं कुछ हो भी जाता है तो वो उसी टाइम पे खत्म हो जाता है। और एक और कि किसी को भी मैं कुछ ऐसा नहीं, ना मैं करती हूँ ना मैं कुछ बोलने की कोशिश, कि मेरे किसी कुछ बोलने से या कुछ करने से कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, मैं बोलती ही नहीं हूँ, कि मैं बाद में ये सोचती हूँ कि अगर मेरे कुछ बोलने से, सच भी बोलने से अगर सामने वाले को पिंच हो गई, तकलीफ हो गई, तो जो वो उसको फील होगा वो चीज मुझे बॉदर करेगी बाद में। मैं आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल बंद, टोटली बंद कर दिया। पहले मैं आर्ग्यूमेंट शुरू कर देती थी, कुछ भी बोल देती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कि सिर्फ दो तीन पॉइंट्स मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, जैसे इतनी स्टेबिलिटी आई है मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखो फ्रेंड, सिंपल बात है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो भगवान को पता होता है हम कहाँ कहाँ पे अटके हुए हैं, कौन कौन सी चीजों में अटके हुए हैं। जब मैं भगवत गीता पढ़ने स्टार्ट हुई तो मेरे को इससे पहले कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या मेरी लाइफ में चल रहा है। बस मुश्किलें आ रही हैं और मुझे उससे डील करने नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं है कैसे जीवन जीना है। बिल्कुल जैसे दुनियादारी का जीवन जी रहे हैं वैसे वैसे जी रही थी मैं ना, और कोई लाइफ में चेंजेस नहीं, पता ही नहीं है इस लाइफ को कैसे मैं बेटर वे में जी सकती हूँ। तो मतलब जो भी चीजें हम सीखते हैं ना भगवत गीता के द्वारा, जो भी ज्ञान हमें मिलता है, तो भगवान हमें एक्चुअली वही एग्जैक्ट वही चीजें बता रहे होते हैं जो जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना। तो वही बातें हमारे अंदर घुसती रहती है ना, इतना कुछ भगवान ने बताया भी नहीं है ना। तो जो ये दो तीन बातें भी अगर आप अपना रहे हो, जितनी आप बातें आपने बोली है, तो वो कम नहीं है। एक व्यक्ति का जीवन पूरा उससे संवर सकता है, शुद्ध हो सकता है। तो हमें क्या लगता है कोई और आएगा मेरा जीवन बेटर होगा, है ना, कि कोई और मुझे सुख देगा तब मैं सुखी रहूंगी, है ना। तो ये नहीं हमें पता होता है कि हम खुद ही हैं जो सुखी रह सकते हैं और हम ही हैं जो दुखी रह सकते हैं। हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है कि कोई ऐसा होना भी नहीं चाहिए कोई हमें खुशी कर दे या कोई हमें दुख दे दे। अगर हम चल रहे हैं छल कपट के बिना जीवन जी रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार जीवन जीते हैं, किसी का मन परेशान नहीं करते, तो भगवान ये सब चीजें देखते हैं ना कि हम सिंसेरिटी से चल रहे हैं, ना खुद परेशान होना ना किसी को परेशान करना, सिंपल खुद भी लाइफ जियो दूसरे को भी लाइफ जीने दो। जब हम ये सीख जाते हैं ना, सब चीजें अपने आप ही होने लगती हैं, बोलते हैं ना चमत्कार होने लग जाते हैं। तो वही बातें हैं, चीजें सुधरने लग जाती हैं, जो भी राइट चीजें हैं, जो भी होनी चाहिए थी, जहां पे हम अटके होते हैं वो चीजें अपने आप ही सही होनी शुरू हो जाती है ना। बाकी नीड और ग्रीड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जहाँ पे हम एक्चुअली अटके हुए हैं, जहाँ से हमारी बेटर लाइफ हो सकती है, वो चीजें होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, हम अगर हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो इतना कुछ पैसा मिल जाएगा, मैं वो बात नहीं हो रही। बहुत ही अशांत लाइफ होती है ना, पता नहीं होता क्या करना क्या नहीं करना। जब हम सिंसियरिटी से चलते हैं तो लाइफ राइट वे में अपने ट्रैक पे आ जाती है, मतलब लाइट ट्रैक से नीचे होती है। भगवान का जब ज्ञान मिलता है, भगवान का हाथ आता है सिर पे, तो अपने आप ही लाइफ ट्रैक में आना शुरू हो जाती है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। आज भजन के टर्न में मीनाक्षी जी किया, मीनाक्षी जी आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब से ये सत्संग ग्रुप ज्वाइन किया है और जब भी मैंने भजन गाया है, फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि वो मेरा भजन हमेशा सत्संग से रिलेटेड ही हुआ है। पहले मैंने कभी ऐसा नहीं है कि मैंने सत्संग के वर्सेस पढ़ के फिर मैंने अपना भजन सिलेक्ट किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर हमेशा ऐसा होता है कि वो उससे जुड़ा हुआ ही होता है। तो मुझे लगता है आज मैं जो भजन गाने वाली हूँ वो भी उसी से ही है। तो मैं आप शुरू करती हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोल एवरीवन हरे हरे बोल जय श्री राधे कृष्ण हरे हरे बोल।